يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل تک کے ہماری گفتگو کا موضوع اور ٹاپک یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے، ولایت حکومت اسلامی، ولایت فقیہ یا ولی فقیہ، اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہونا ضروری ہے. تو کل ہم نے مختصر سے عقلی روشنی میں بحث کی تھی کہ عقل کے اعتبار سے جب ہم عقل کی طرف رجوع کریں، عقل سے پوچھیں کہ ولایت کی یا حکومت اسلامیہ کی یا ولایت فقیہ کی ضرورت کیا ہے، تو جب ہم نے عقل کی طرف رجوع کیا تو عقل سے ایک فیصلہ، ہم کو ایک نتیجہ یہ ملا. مختصر طور پر بیان کریں کہ رسول اللہ کی رحلت و شہادت کے بعد ائمہ تاریخ کا دور گزرا، اس کے بعد امام زمانہ عدل اللہ تعالیٰ فرمائے
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد،
اور امام کے بعد جب امام پردہ غیب میں وہ مصلحت پروردگار پردہ غیب گئے، تو اب اس دور میں ایک ہادی کا، ایک رہبر کا، ایک ایسی ولایت کا کہ جو ہم معصوم کی عدم موجودگی میں جس کی طرف رجوع کیا جا سکے اپنے تمام مسائل میں، ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جسے حکمت نظام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور یہ سلسلہ جب تک انسان قیامت تک رہے گے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اگر ایک سوال کیا جائے کہ آج کے دور میں، آج کے سچویشن میں، آج کے زمانے میں، کیونکہ بظاہر امام پردہ غیب میں حقیقی والی، حقیقی وارث، حقیقی حاکم ہمارے بارہویں امام ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیونکہ مصلحت پروردگار کے تحت امام دور حاضر میں پردہ غیب میں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم ڈائریکٹ امام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا کوئی تو ایسا ہو کہ جو امام کا نائب ہو، کہ جس کی طرف ہم اپنے تمام امور میں رجوع کیا جائے. تو عقل نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ یقیناً ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے کہ جو امام کی غیبت میں تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکے. تو جو اب عقل یہ بات بھی قبول کرتی ہے کہ ایسا ہی انسان ولی ہو، ایسا ہی انسان امام کا نائب ہو کہ جس کا تعلق، جس کا کانٹیکٹ امام سے بہت زیادہ نزدیک ہو. تو کل ہم نے عقل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر جب ہم جائزہ لیں گے، تو سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے امام سے زیادہ، جو کانٹیکٹ میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، وہ ہے ہمارے فقہا، وہ ہے ہمارے مجتہدین نظام، کہ اللہ تعالیٰ اس سب کا بار سر پر صحیح و سالم رکھے، سلام. تو اب عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جب ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس کا امام سے کانٹیکٹ بہت نزدیکی ہے، تو یقیناً اس کو اپنے لیے حاکم اور ولی ماننے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں کل ہماری بحث ہوئی تھی، تو عقل کی روشنی میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ولایت فقیہ کی بحث کو چار عنوان سے ٹاپک کریں گے، یعنی چار عنوان سے ثابت کریں گے. پہلی چیز عقل کی روشنی میں، یعنی عقل گویا اس بات کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ ولی فقیہ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو کل تک کی بحث میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یقیناً کسی ایک انسان کا، ایسے ولی کا، ایسے حاکم کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس سسٹم اور نظام کو چلائے امام کی غیر موجودگی میں. عقل کی روشنی میں کسی حد تک بات ہم نے ظاہر کی. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلہ ولایت فقیہ کو قرآن کی روشنی میں، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، اس کو حل کرنے کے چار طریقے ہیں. عقل، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث سنت، اس کے بعد عقل، اور چوتھی چیز ہے اجماع، یعنی علماء کا ایک گروہ کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے. تو آ جائیے ہم بحث کریں گے قرآنی نقطۂ نظر سے، ولایت فقیہ قرآن کے نقطۂ نظر سے، قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. آج کا ہمارا انشاءاللہ بحث موضوع ٹاپک رہے گا विलायत फकी कुरान की रोशनी में। तब आइए, जब हम कहते हैं कि हुकूमत, सियासत, पॉलिटिक, जब ये लफ्ज़ पॉलिटिक हमारे कानों से, समाज से टकराता है, तो हम यही समझते हैं कि यानी इस लफ्ज़ से बदनुमा या इस लफ्ज़ से गंदा कोई और लफ्ज़ नहीं है। जब लफ्ज़ हुकूमत, लफ्ज़ सियासत हम सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि जहाँ पर धोखाधड़ी हो, जहाँ पर लूटमार हो, जहाँ पर एक दूसरे की कत्ल गारत गिरी हो, यानी तमाम जितनी बुराइयाँ हो सकती है हम उसको ले जाकर सियासत पर डाल देते हैं कि सियासत इसी का नाम है। लेकिन अगर हकीकत की रोशनी में देखा जाए तो सियासत सिर्फ इसी का नाम नहीं है। अब फिर सियासत है क्या चीज, तो अब बताइए सियासत क्या है, और इस्लामी हुकूमत और इस्लामी सियासत किसे कहते हैं। दो तरह की सियासत है, एक है इस्लामी सियासत, एक है दुनियावी सियासत। दोनों में जमीन का आसमान का फर्क है। जो इस्लामिक सियासत है, जो इस्लामिक पॉलिटिक है और जो दुनियावी पॉलिटिक है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर इस्लामिक पॉलिटिक को हम देखेंगे तो सिवाय अच्छाई के इसमें कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी जो इस्लामिक पॉलिटिक है, जो इस्लामिक सियासत है, इसमें ना आपको बेजा आपको गारतगिरी मिलेगी, ना दूसरे का हक लूटने में या घसीटने का आपको कोई ऐसी वारदात मिलेगी नहीं, बल्कि जहां पर पाक और पाकीज़ा हुकूमत है उसका नाम है इस्लामी सियासत। कि जहां पर हर एक के हुकूक को बराबर से तकसीम किया जाता है, चाहे वो इज्तिमाई हक हो, इंफरादी हक हो, इक्तसादी हक हो, कल्चरल हक हो, जो भी हक हो। इस्लामी सियासत और हुकूमत का मतलब ही यही है कि इंसान को कमाल और इंसान को उसके असली हदफ तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें इस्लामी कानून के सूरत में इंसान को दी जाए, ताकि इंसान अपने असल मकसद और हदफ तक पहुँच सके। लेकिन इसके बरखिलाफ आप दुनियावी दुनियावी सियासत और पॉलिटिक को देखेंगे क्या है, हर पॉलिटिकल, हर सियासतदान क्या करता है, सिवाय अपने मफाद के, अपने फायदे के, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप अखबार में, न्यूज वगैरह में ये सब चीजें आपके लिए रोशन हो रहे हैं, बड़े बड़े घपले सामने आते हैं कि खुला सियासतदान ने इतने करोड़ का घपला किया है, नहीं है? लेकिन जहां पर हकीकी इस्लामी हुकूमत है वहां पर आपको ये चीज नहीं मिलती है। वहां पर असलन अदालत के अलावा किसी और चीज का तस्वीर आप नहीं कर सकते। तो अब आइए, हमने कहा कि इस्लामी हुकूमत का मकसद मुसलमानों को सिर्फ मादा और मादा परस्ती में मुनहसिर करना। इस्लामी हुकूमत जो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि आदमी को आए, इस्लाम ने कहा कि इस्लामी हुकूमत का मकसद ये कि आदमी को दुनिया और दुनिया परस्ती में महदूद करके रख दिया जाए, ना ये है, ना ये है कि या सिर्फ रूहानी पहलू में बंद करके हलाल और जायज दद्दतों से महरूम करना नहीं है, ना इफ़रात है, ना तफरीत है, ना पूरी तरह से इस्लाम ने इंसान को आजाद कर दिया कि जो तुम्हारा जी चाहे करो, ना ये कि जो चीजें इंसान के लिए हलाल है उन्हीं हलाल में उसको महदूद करके उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि तुम लज्जत ही दुनिया से महरूम हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ दीन और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दीन में लगे रहो, नहीं। बल्कि इस्लामी सियासत का मकसद क्या है, ना इफरात है, ना हद से आगे बढ़ा है, ना एकदम खुली छूट दी है, ना बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल में रखा है, बल्कि क्या मकसद है, बल्कि इस्लाम के पेश नजर यानी इस्लामी नुक्ते नजर से इंसान को उसकी खिलकत के असल मकसद और हदफ की तरफ गामजन करने के लिए। इंसान, आप बेहतर जानते हैं कि इंसान इस दुनिया के लिए खल्क नहीं हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हम पैदा हुए हैं, इस दुनिया में पैदा हुए हैं, बस जो कुछ है इसी दुनिया में हमको करना है, कमाना है, खाना है, किसी तरह से जिंदगी अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरी लाइफ गुजार कर चला जाना है। मकसद हमारी हयात और खिलकत का ये नहीं है, बल्कि हम किसी और दुनिया के लिए खल्क किए गए हैं। ये दुनिया तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म और स्टेशन की तरह है कि इंसान यहाँ से गुजर जाता है। तो अब इस्लामी सियासत का मकसद क्या है, इस्लामी सियासत और हुकूमत का मकसद और हदफ ये है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए वो तमाम उमूर अपने आखिरत के लिए जखीरा करके ले जाए, वो काम भी जो उसके इसके बाद वाली दुनिया में काम आने वाले हैं। मादी चीजों से दुनिया में रहकर दुनियावी चीजों से इस तरह से इस्तेफादा करे कि उसकी दीन भी आबाद हो और दुनिया भी आबाद रहे, ना पूरा दुनिया का होकर रह जाए, ना सिर्फ जो है पूरा दीन का होकर रह जाए, नहीं बल्कि बैलेंस को लेकर चलना है साथ में, दीन भी हो और दुनिया भी हो। तो ये दुनिया आखिरत को संवारने का एक बेहतरीन जरिया है, یہیں سے انسان اپنی آخرت کو سنوارتا ہے. یہ مفہوم, یہ لاجک, یہ منطق ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ اسلامی حکومت سے. یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی کہ جب اسلامی حکومت ہوگی, جہاں پر اسلامک نظام سسٹم ہوگا, وہاں پر ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی برابر سے ملتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ صرف دنیا کی سیاست کو لے لیں, سوائے دنیا کی اس میں کوئی چیز آپ کو دین کے نام پر اور نظر نہیں آئے گی. تو لہٰذا جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں, رسول اللہ کی مشہور معروف حدیث ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. انسان کو کام اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے آخرت کے لیے. تو یہ مقصد ہے اسلامی حکومت کا. تو اب جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان نظام اسلامی اور حکومت اسلامی کے تحت اپنی دین اور دنیا دونوں کو سنوارے, تو ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کہ وہ ہم ہی میں سے ہو, اور ہم اس کو دیکھ کر نتیجہ حاصل کریں. اگر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے, کم از کم اس کی پیروی اور اتباع کریں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو لہٰذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے, یعنی اپنے حقیقی مقصد کو, جس مقصد اور ہدف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق اور پیدا کیا ہے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے رہبر کی رہبری کی ضرورت ہے, ایک ایسے رہبر کے رہبری کی ضرورت ہے جو خود اس معیار اور پیمانے کا اعلیٰ نمونہ ہو. یعنی خود دنیا میں رہ کر جس نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی سنوارا ہو تو اور دنیا بھی سواری ہو. تو ایک ایسا ماہر اور ایک ایسا آئیڈیل ہم کو چاہیے ہے کہ جو اس میزان پر پورا اترے, اور پھر ہم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے کارنامے کو, اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر سکیں, اپنے زندگی کے ہدف اور ٹارگیٹ کو پورا کر سکیں. ایک بات. اب آئیے دوسری بات. دوسری طرف اسلام کا نظام, جو سسٹم, جو قانون اسلام نے ہم کو دیا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے کہہ چکا, ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے, کیا انسانوں نے خود اس کو بنایا ہے؟ سوال ہے کہ اسلام کا نظام, جو اسلام کے قانون, اسلامی سسٹم ہے, کیا انسانوں نے اس کو بنایا ہے؟ ہرگز نہیں. حتیٰ کہ ائمہ اور انبیاء کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے نئی چیزیں, نئی سسٹم پیش کرے کہ جو اللہ نے نہیں بنایا ہو. جیسے کہ گزشتہ سبق میں گزرا ہے, گزشتہ جلسات میں بیان کیا ہے کہ خود رسول اللہ کے لیے کہا کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہیں بھی دیتے ہمارے بارے میں, تو ہم اس کا دائرہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ تو اب رسول کی بھی, خود رسول کی بھی, یہ رسول کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک کوئی نیا سسٹم, کوئی نظام اپنی طرف سے پیش کرے. تو بات یہ ہوئی ہے کہ اسلامی نظام جو ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جب یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وہ کس صورت میں نازل کیا ہے؟ قرآن کی صورت میں ہے, شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت محمدی, اور آپ کے آل اطہار ائمہ معصومین کے بیان کردہ احادیث کی شکل میں موجود ہے. اب جو ہمارے پاس اسلامی نظام ہے, جو ہمارے پاس اسلامی سسٹم ہے, یہ سسٹم خود کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, کسی انسان نے اس کو نہیں بنایا, بلکہ یہ سسٹم, یہ نظام جو ہے, یہ اللہ کا نازل کردہ نظام ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اس کے بعد شریعت رسالت مآب میں, اور اس کے بعد ائمہ کی احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, پورے نظام کو, پورے حیات کو. اب یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, جو اسلام کا نظام قرآن میں یا شریعت میں یا ائمہ کی احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے, ایک صلوات پڑھی محمد علی
محمد.
اگر ہم اسلامی نظام اور سسٹم کا خلاصہ کریں تو یا تو قرآن میں ہے, یا شریعت ہے, یا ائمہ کی احادیث ہے. ان تین چیزوں میں اسلامک نظام کے اور اسلامک سسٹم کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں, بیان کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات ہے؟ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے؟ بالفرض اگر کسی انسان کو مثلا یہ مسئلہ پیش ہو کہ بھائی نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں, کیا مجھ جیسا ایک معمولی طالب علم اس مسئلے کو کہ نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں, اس مسئلے کو قرآن سے حل کر سکتا ہوں میں؟ ہرگز نہیں. رسول کی शरीयत या आइमा के बयान करदा आदिस को समझकर उससे हल कर सकता हूँ? हरगिज नहीं। एक मामूली इंसान में, मुझ जैसे मामूली इंसान में ये कैपेसिटी नहीं है कि जो इन अहकाम को, जो दीन से मुताल्लक है, सियासत से मुताल्लक है, इक्तिसाद से मुताल्लक है, सकाफत यानी हमारी कल्चर से मुताल्लक है, इन तमाम चीज़ों को कुरान से या रसूलुल्लाह की सीरत से या आइमा की बयान करदा अहादीस से मैं निकाल सकूँ, ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो फिर अब ये उस इंसान के बस की बात है कि जिसने अपनी तमाम जिंदगी का सरमाया इसी लाइन में सब किया, अपनी जिंदगी के 40 साल 45 साल सिर्फ उसका दिन रात का यही मशगला रहा हो कि वो अहकाम को कुरान हदीस और आइमा के अकवाल और अहादीस से उसको समझ सके। तो लिहाजा अहकाम इलाहिया का इस्तेमाल यानी इलाही कवानी इलाही अहकाम को प्रूफ करना, इस्तेमाल करना यानी प्रूफ करना सिर्फ ऐसे चंद अफराद कर सकते हैं, हर एक के बस की बात नहीं है, बल्कि एक खास ग्रुप है, कुछ खास लोग हैं कि वो कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं कि जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी का सरमाया यानी अपनी पूरी लाइफ किस चीज में सर की, अहकाम को समझने, ठीक है, अहकाम को समझना करार दिया है और अहकाम को समझने में मुकम्मल महारत रखते हैं। तो जो लोग अपनी जिंदगी के 40-45 साल से इसी लाइन में खर्च करते हैं वही लोग जाकर इस बात पर कादिर होते हैं कि वो हर मसले को कुरान से और अहादीस से उसको हल कर सके। यहां तक की बात वाज़ेह है। अब बात आगे बढ़िए। अब कुरान करीम के नजदीक हुकूमत इस्लामी के सरबरा की शरायत क्या है? हमने कहा ना कि जब हुकूमत है तो उसके लिए एक चलाने वाला कायद भी जरूरी है। अल्लाह ताला ने दो चीजें इंसान के लिए करार दी है, एक कानून बनाया है, दूसरा कायद यानी लीडर। तब कुरान की नजर में अगर हम इस्लामिक हुकूमत के लिए किसी वली, किसी हाकिम, किसी लीडर को अगर तस्लीम करते हैं तो कुरान ने उसके लिए कौन सी सिफतें बयान की है? हम हर एक को अपने लीडर नहीं मानते, हमारा मजहब अंधी तकलीफ का कायल नहीं है कि जो सामने खड़ा हो जाए वही हमारा लीडर है, बल्कि हम कुरान की रोशनी में कुरान ने जो सिफात बयान किए हैं अगर वो सिफात और वो कंडीशंस उसके अंदर मौजूद हैं तब जाकर हम उसको अपना वली और हाकिम बना सकते हैं। हर एक को वली और हाकिम बनाने का हक हमको नहीं है। तो खुद कुरान से पूछे कि कुरान ने वली के लिए, हाकिम के लिए क्या शरायत बयान की है ताकि जिस इंसान में भी वो शरायत पाई जाए हम उसको कुरान की रोशनी में अपना वली और हाकिम बना सके। तो कुरान करीम के नजदीक हुकूमत इस्लामिया के सरबरा की शरायत क्या है? आया हर शख्स, जो भी शख्स आए, क्या हर शख्स को हम हाकिम तसव्वुर कर सकते हैं? हम हर एक को आंख बन करके अपना हाकिम माने, जो भी दावा करें कि मैं हाकिम हूँ, मैं वली हूँ, क्या हम उसको आंख बन करके अपना वली तसव्वुर कर सकते हैं? हरगिज नहीं। तो अब क्या चीज है? कुरान ने जो शरायत बयान किए हैं, कुरान ने जो शरायत बयान की है एक वली के लिए, एक हाकिम के लिए, वो उन सब में सबसे पहली और बेसिक शर्त जो बयान की है वो है तकवा और ईमान। वो चीज क्या है? सबसे पहली शर्त जो एक वली और हाकिम के लिए कुरान मजीद ने बयान की है वो है तकवा और ईमान। चुनांचे परवरदिगार आलम कुरान के नुक्ते नजर से हर कोई हाकिम आला के मनसब पर फायज नहीं हो सकता, हर एक को हम हाकिम तस्लीम नहीं कर सकते, बल्कि हाकिम आला के लिए ईमान, तकवा, इल्म, खाली इल्म नहीं, इल्म के साथ अमल, अमल के साथ साहेब बसीरत होना भी जरूरी है। एक हाकिम के लिए कुरान जो कहता है, जो सिफात कुरान ने बयान की है, एक हाकिम या हाकिम आला के लिए, वली फकी के लिए जिन शरायत को होना जरूरी है उनमें से सबसे पहले तकवा, ईमान, इल्म, अमल के साथ, उसके बाद बा बसीरत होना, साहिब बसीरत होना भी जरूरी है। चुनांचे परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, जो लोग तुम में से ईमानदार हैं और जिनको इल्म अता हुआ है। पहली शर्त हमने कहा था कि ईमानदार है, बाईमान है, दूसरा क्या, इनको परवरदिगार की जानिब से इल्म अता हुआ है, जो साहिबान इल्म है। तो चुनांचे खुदा कहता है जो लोग तुम में से ईमानदार हैं और जिनको इल्म अता हुआ है, खुदा उनके दराजात बुलंद करेगा। एक इल्म, दूसरा पहला कहा कि ईमान, दूसरा इल्म। एक बलि एक हाकिम आला के लिए पहली शर्त ईमान है कि बा ईमान हो, दूसरा इल्म हो। तो जिसके पास ये दो सिफतें, परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद करेगा। अब इस आयत की रोशनी में, जो हमने आयत आपके सामने तिलावत की है, इस आयत की रोशनी में पूर्व मंजिलत और दराजात में बुलंदी का मियार ईमान और इल्म को करार दिया है। जो लोग अल्लाह से सबसे ज्यादा नजदीक है, जो कुर्ब इलाही के सबसे ज्यादा करीब और नजदीक है, अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह से नजदीकी के लिए दो शरायतें बयान की, पहली ईमान, दूसरा इल्म। अब ये वाज़े हो गया कि जो शख्स इस्लामी मेयार के मुताबिक अल्लाह के नजदीक किसी खास मकाम और दर्जे का हासिल होगा, तो ऐसा शख्स बाकी अफराद से ज्यादा काबिल इताअत है। दो चीजें हैं, एक इंसान है कि जो जाहिल है, ना जिसके पास ईमान की कोई रोशनी है ना जाहिल। एक इंसान वो है कि जो बा ईमान है, बा इल्म है, बा तक्वा है। तो अब हम कि जो हमारा ईमान कम है, हमारा तक्वा कम है, तो अब हम अपनी इत्तेबा के लिए, हम अपनी इताअत के लिए किस इंसान को अपना आइडियल और नमूना बनाएंगे? यकीनन ऐसे इंसान को जो हमसे ईमान में आ गए हैं, क्योंकि ईमान की भी दरजे हैं। हर इंसान ईमान के एक लेवल पे फायज नहीं है, बल्कि ईमान की भी दरजे है, और जिसका जितना ज्यादा इल्म बढ़ता जाता है, ईमान उतना ही ज्यादा कवी होता जाता है। जितना ज्यादा इल्म आता जाता है, उतना ज्यादा ईमान कवी होता जाता है। तो जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा, ईमान के लिहाज से वो उतने अजीम दर्जे पर फायज होगा। तो अब जो वली है, फकीह है, जो फकीह है, जो मुज्तहिद है, यकीनन उसका इल्म हमारा इल्म एक सा है। हम क्या फकीह के इल्म को मुज्तहिद के इल्म को अपने इल्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। उनका इल्म कुजा, हमारा इल्म कुजा, यानी जिसको कहा जाए दरिया को कतरे से क्या रिश्वत। यकीनन अइमा की बात अपनी जगह पर है, उनका मुकाबला करना ही मुहाल है, यानी उनके मुकाबले में मुकाबला करना किसी सूरत से हमारे लिए जायज नहीं है। तो अब अइमा के रास्ते पर जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को गुजारी है, अइमा से जो लोग सबसे ज्यादा करीब है, वो हमारे फुकहा है, वो हमारे आयत इजाम मुज्तहिदीन किराम है, तब उनका इल्म हमारे इल्म के बराबर नहीं हो सकता। जब हमारा इल्म उनके इल्म के बराबर नहीं, तो यकीनन ईमान, हमारा ईमान और उनके ईमान में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो अब अगर हम अपनी रहबरी के लिए, अपनी इत्तेबा इताअत के लिए किसी इंसान को कबूल करेंगे, यकीनन जो ईमान के लिहाज से, जो इल्म और तकवे के लिहाज से हमसे ज्यादा आला और अरफा हो, तो कुरान इसीलिए परवरदिगार ने शायद इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लेकर आए हैं और जिन लोगों को इल्म अता किया है, परवरदिगार ने उनके दराजात को बुलंद किया है। तो लिहाजा यकीनन फुकहाए इज़ाम और मुज्तहिदीन इज़ाम जो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, उनका ईमान भी हमसे ज्यादा है। तो लिहाजा हम अपनी पैरवी में, इताअत में किसकी इत्तेबा करेंगे? यकीनन उन्हीं की इत्तेबा करेंगे, और वही लोग हमारे लिए काबिले इत्तेबा और काबिले इताअत हैं। चुनांचे दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह यूनुस में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आता दिखा सकता है? हरगिज नहीं। एक अल्लाह दूसरे रास्ते किसी और इंसान की हिदायत कर सकता है? किसी और इंसान को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। आयत ने भी यही कहा है, वो इंसान इत्तेबा और पैरवी के लायक है कि जो खुद हिदायत याफ्ता है और दूसरों को भी हिदायत करता है। यकीनन ऐसा इंसान हिदायत याफ्ता है और इसकी पैरवी और उसका हुक्म मानना भी चाहिए है। लेकिन वो इंसान की जो खुद हिदायत में किसी और का मोहताज है, ऐसे इंसान की पैरवी नहीं की जा सकती है। तो अलगरज इस आयत शरीफा में उन दो अफराद के दरमियान तकाबुल किया गया है, एक तो वो इंसान कौन, एक वो इंसान जो दूसरों को हिदायत करता है, खुद भी हिदायत याफ्ता है और दूसरों को भी हिदायत का रास्ता दिखाता है। एक ये इंसान है, दूसरा कौन है? दूसरा वो इंसान है कि जो दूसरों को हिदायत करना तो दरकिनार, खुद इंसान बजात खुद अपने लिए भी हिदायत का मोहताज है। तब इंसान अपनी रहबरी के लिए किसको इंतखाब करेगा? यकीनन उस इंसान को इंतखाब करेगा कि जो खुद हिदायत याफ्ता भी है, उसमें ये कैपेसिटी भी है कि वो दूसरों को रास्ता दिखा सके। अब अगर कोई एक इंसान इन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दे, एक ही नजर से देखे, तो क्या इन दोनों को एक ही नजर से देखना अक्ल इस बात की इजाजत देती है? हरगिज नहीं। तो इन दोनों को एक ही कतार में खड़ा करना गैर मंतिकी अमल है, यानी लॉजिक इंसान के अक्ल इस बात की इजाजत नहीं देती कि जो इंसान हिदायत याफ्ता है, दूसरों की हिदायत करने की कैपेसिटी भी है ये इंसान, और दूसरा वो इंसान कि जो ना खुद जानता है बल्कि खुद हिदायत में दूसरे का मोहताज है, क्या दोनों में तकाबुल सही है? बिल्कुल नहीं। तो यकीनन ऐसे इंसान की इत्तेबा पैरवी की जाएगी कि जो हिदायत याफ्ता भी है, दूसरों को हिदायत का रास्ता भी दिखाने पर कादिर है। तो बहरहाल ये एक हकीकत है कि खुदावंद आलम के नजदीक वही लोग मुकर्रम और वही लोग मोहतरम है कि जो ईमान और तकवाए खुदावंदी से मामूर है। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह के नजदीक वही लोग काबिल एहतराम है, वही लोग काबिल इज्जत है कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। चुनांचे सूरह हुजरात में इशारे रब्बुल इज्जत है, इन्ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक उनमें से अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करीब वही लोग हैं कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और सबसे ज्यादा परहेजगार है। इसमें शक नहीं कि खुदा के नजदीक तुम्हें बड़ा इज्जतदार वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो जाहिर एतबार से अगर हम देखें, हम अल्लाह ताला ने हमको जाहिर पर अमल करने का हुक्म दिया है, हमको किसी के बातिन से कोई सरोकार नहीं है। तो जब हम जाहिर तौर पर देखते हैं तो जनरली तौर पर मुत्तकी या परहेजगार अगर आपको कोई जाहिरी तौर पर दिखाई देता है तो यकीनन उलमा है, फुकहा है कि जो हमसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। चुनांचे खुद परवरदिगार आलम सूरह शोरा में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये कुरान की आयत है। कुरान में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन लोगों में, इंसानों में अगर कोई अल्लाह से डरने वाला है जिनके दिलों में खौफ खुदा है तो वो है उलमा। अब उलमा में भी कोई खास है कि हमने कहा कि जिसका जितना ज्यादा इल्म बढ़ता है ईमान बढ़ता है, जितना ज्यादा ईमान बढ़ता है उतना ज्यादा तकवे में भी इजाफा होता जाता है। तो अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे नजदीक कोई एक साहिब इज्जत है, अगर कोई लायक तकरीब और कोई लायक एहतराम है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी। और अगर हम जाहिरी तौर पर देखा जाए तो यकीनन आपके फुकाए इज़ाम आयत इकराम फुकाए इज़ाम अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले लोग हैं। तो अब तक का खुलासा बहस लब्बे लुबाब दस का ये हुआ कि इस्लामी हुकूमत के हाकिम आला की पहली शर्त, यानी हम जिसको भी अपना वली फकी माने, हाकिम आला यानी अपना वली फकी हम जिसको भी माने, उसके लिए कुरान के नुक्ते नजर से पहली शर्त क्या हुई? पहली शर्त का खुलासा करते हैं ईमान और तकवा में। जिसको भी हम अपना वली फकी माने, हम हर एक को वली फकी नहीं मान सकते, ताबूत को अपना वली फकी नहीं मान सकते। पहली शर्त ईमान है, दूसरी शर्त उसकी तकवा है। जहां ईमान और तकवा बाकी रहेगा यकीनन वो लोग इत्तेबा के काबिल है, इताअत के काबिल है। जहां भी तकवा और ईमान सल्ब हुआ तो हमको कहने की जरूरत नहीं है बल्कि खुद ब खुद वो लोग इस ओहदे से खारिज हो जाते हैं, इस ओहदे से माजूम हो जाते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि हाकिम आला या विलायत फकीह के लिए पहली शर्त कुरान की रूह से तकवा और ईमान है। और उसके बाद ये हम खुलासा कर सकते हैं कि हाकिम आला जो जिसको हम वली फकी मान रहे हैं, आला हाकिम मान रहे हैं, उसके लिए ये चीजों का होना जरूरी है। क्या ये अकीदा रखता हो कि इंसानी जिंदगी को कमाल तक पहुंचाने के लिए, यानी इंसान को उसके असली हदफ और टारगेट तक पहुंचाने के लिए कानून बनाने वाला सिर्फ खुदा ही है, ये वली फकी का अकीदा और ईमान हो, हाकिम आला का ये अकीदा और ईमान हो कि जितने भी इंसान को उसके असल मकसद तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद निहायत तक पहुंचने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन तमाम चीजों को, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि कानून को बनाने वाला अल्लाह है, लिहाजा वो ना वली फकी ना हाकिम आला खुद अपने तरफ से इंसानों के लिए उसको कानून बनाने का कोई हक नहीं है, बल्कि कानून बनाने का इख्तियार यह वली फकी का और हाकिम आला का ईमान और अकीदा होना चाहिए है कि हुक्म या कानून बनाने का हकदार अगर कोई जात है तो वह जात है परवरदिगार आलम। जिस तरह से इंसान और एक वली को एक हाकिम आला को यकीन है कि इंसान को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है, इंसान का खालिक अल्लाह है, जिस तरह की अकीदा है कि अल्लाह के सिवा और कोई खालिक नहीं है اسی طرح سے یہ عقیدہ ایمان بھی ہونا چاہیے ہے کہ قانون بنانے والا یا مشرع جس کو کہا جائے شریعت کو بنانے والا شریعت کو نازل کرنے والا سوائے ذات پروردگار کے کوئی دوسرا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی حاکم اعلی کا ولی فقیہ کا یہ ایمان ہو کہ اسلام کا قانون تمام انسانیت کے لیے ہے. اسلام کا قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انسان اسلام کا قانون تمام انسانیت کے لیے, جو قبول کرے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا. انسان یہ نہ سوچے تنگ نظری کا شکار نہ ہو جائے کہ جتنے مسلمان ہیں صرف ہم اسی کے لیے بات کریں, دیگر جو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بات دیکھیں گے آپ نے کہ جہاں بھی جو بھی انسان قتل کیا جا رہا ہے انسانیت کے بچاؤ کے لیے یا انسانیت کے حق میں اگر نعرہ بلند کیا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ایک ہی ملک کائنات میں دنیا میں, وہ ہے جمہوریہ اسلامی ایران. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر صرف شیعہ مرے ہو تو انہیں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا ہو, سنی مرے ہو یا انہیں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا ہو, نہیں بلکہ کلی طور پر یہ کہا ہے کہ انسانیت کی حفاظت کی جائے نہ مسلمانوں کی حفاظت کی جائے. یہ ولی فقیہ کا یہ حاکم اعلی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے قوانین صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے, جہاں جہاں بھی انسان اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہ نظام یہ سسٹم صرف ایک محدود وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ سسٹم باقی رہنے والا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. جب ایک ولی فقیہ یا حاکم اعلی اس قوی الایمان شخص سے اب اگر کوئی اس منزل پر فائز ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس قوی الایمان شخص سے ملت اسلامیہ کو اطمینان اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے سیاسی یا پولیٹیکل معاملات ہو یا اکنامک معاملات ہو یا ثقافتی کلچرل معاملات ہو ان تمام کے مفاد پر کبھی سودا نہیں کرے گا. جس انسان کا یقیدہ ہو ایسا قوی ایمان ایسا حاکم اعلی ایسے ولی فقیہ کہ جس کے پاس ایمان اور تقویٰ کی دولت ہو تو ایسا انسان کبھی بھی اسلام کے حق میں یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ وہ اسلام کے اکنامک سسٹم کو یا اسلام کے ثقافتی سسٹم کو یا اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو کسی اور سے کوئی نقصان پہنچے. جب ایمان اس کا قوی ہو جائے گا ولی فقیہ حاکم اعلی جب اس منزل ایمان اور تقویٰ کے منزل پر فائز ہوگا تو پھر وہ اب تک کبھی ذاتی مفاد نہیں سوچے گا بلکہ جو بھی کام کرے گا وہ جنرلی تمام مسلمان اور امت اسلامیہ اور دین اسلام کے حق میں کام کرے گا, اپنے ذاتی حق میں کوئی کام نہیں کرے گا اور کبھی بھی ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. بھلے سے اس کی ذات کو نقصان ہو جائے وہ اسے گوارا ہے لیکن وہ کبھی ایک مسلمان یا ملت اسلامیہ یا اسلام کو نقصان کبھی اس کی طرف سے نہیں پہنچ سکتا بلکہ اسے ہر خطرے سے بچانے کی حتی الامکان وہ کوشش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے قوی ایمان کا تقاضا ہے. جہاں ایمان قوی ہوتا ہے کمال قوی ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے اور اسلامی اصول کے مطابق ایک ولی اور ایک حاکم کا فریضہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ حاکم اور ولی ہے اس کے ہوتے ہوئے اسلامی سسٹم کو یا ملت اسلامیہ کو یا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے. وہ اپنی طرف سے کبھی بھی مسلمانوں کا نقصان نہیں چاہتا ہے بلکہ ہمیشہ یہ کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ یہ اسلامی نظام اسلامی سسٹم جاری رہے, مسلمان اس سے فائدہ ہوتا رہے, مسلمانوں کو کبھی یا اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ اور ممالک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صرف اپنی جیبیں بھرنے میں یا اپنی گدی بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, نہ ان کو دین اسلام کی کوئی فکر ہے نہ کوئی مسلمانوں کی فکر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.